आज है 4 अप्रैल दिन बुधवार। सभी सुनने वालों को राजेश जोशी का नमस्कार। व्यापार युद्ध के कारण अमेरिका और चीन के बीच कड़वाहट बढ़ी। दोनों ने एक दूसरे के माल पर 25% आयात शुल्क लगाया। चीन ने कहा, विदेशी दबाव में कभी नहीं झुकेंगे। आज दुनिया जहान में समझेंगे कि ये होड़ आखिर क्यों है।
आप अपने को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका उत्पादन कम न हो।
ऑस्ट्रेलिया में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों का रंगारंग उद्घाटन, चलेंगे रेहान फजल के पास। और 3 तलाक में सरकारी दखलंदाजी का विरोध दिल्ली में।
वो बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाएगी, किराया कहाँ से देगी? अगर शौहर जेल में चला गया, वो तो सड़क पर आ गई।
सबसे पहले विश्व समाचार।
बीबीसी समाचार आदर्श राठौर से। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया है। चीन ने 100 से ज्यादा अमेरिकी वस्तुओं पर आयात शुल्क लगाया है, जिनमें सोयाबीन, एयरक्राफ्ट और कारें शामिल हैं। इनके अलावा मक्का, कपास, बीफ, तंबाकू और विस्की पर भी 25% आयात शुल्क लगाया गया है। चीन ने यह कदम ट्रंप प्रशासन के उस फैसले के बदले में उठाया है, जिसके तहत 1300 चीनी चीजों पर इतना ही टैरिफ लगा दिया गया था। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 21वें कॉमनवेल्थ खेलों का आगाज हो गया है। इन खेलों में इस बार 71 देश और प्रांत भाग ले रहे हैं। तुर्की, ईरान और रूस के राष्ट्रपति आज तुर्की की राजधानी अंकारा में मुलाकात कर रहे हैं। इनके बीच इस बात को लेकर चर्चा होगी कि सीरिया में चल रहे गृह युद्ध को कैसे खत्म किया जाए। रूस और ईरान सीरिया के राष्ट्रपति असद का समर्थन करते हैं, जबकि तुर्की इस्लामी विद्रोहियों का समर्थन करता रहा है। इस बीच सीरिया की मानवीय सहायता के लिए संयुक्त राष्ट्र द्वारा बनाई गई टास्क फोर्स के चेयरमैन जैन इंग्लैंड ने कहा कि दुनिया को सीरिया से मुंह नहीं मोड़ना चाहिए। उन्होंने जिनेवा में कहा कि सीरिया में लोग अभी भी मुश्किल हालात में फंसे हुए हैं।
We have 7.7%।
सीरिया में दर्द, यातना और हिंसा का लंबा दौर खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। पूरी दुनिया का ध्यान यहाँ से हट रहा है और ये बहुत गलत है। हाल ही में बड़े पैमाने पर हुए लोगों के विस्थापन पर भी ध्यान नहीं दिया गया। सीरिया की सहायता के लिए फंडिंग भी कम हो गई है। ये थे संयुक्त राष्ट्र के अधिकारी जैन इंग्लैंड के शब्द। फेसबुक के संस्थापक और CEO मार्क जकरबर्ग 11 अप्रैल को अमेरिका के हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स की एनर्जी एंड कॉमर्स कमेटी के सामने पेश होंगे। कुछ दिन पहले जानकारी सामने आई थी कि एक कंपनी को 5 करोड़ यूजर्स के डेटा का एक्सेस मिल गया था। जकरबर्ग खुद भी इस बात को मान चुके हैं कि फेसबुक ने अपने यूजर्स का भरोसा तोड़ा है। US फेडरल ट्रेड कमीशन इस बात की जांच कर रहा है कि कहीं फेसबुक के कारण इसके ग्राहकों को नुकसान तो नहीं हुआ है। ब्रिटेन ने कहा है कि पिछले महीने केमिकल नर्व एजेंट से हुए हमले की संयुक्त जांच के लिए रूस की तरफ से आए प्रस्ताव पर वो विचार कर रहा है। ये टिप्पणी रासायनिक हथियारों की जांच करने वाले अंतर्राष्ट्रीय संस्थान OPCW की इमरजेंसी बैठक के बाद की गई। वहीं बर्लिन में जर्मनी की सरकार के प्रवक्ता अल्ड्रिके डेमर ने कहा कि उनका देश ब्रिटेन की इस बात से सहमत है कि रूस के पूर्व जासूस और उसकी बेटी पर हुए हमले के पीछे संभवतः रूस का ही हाथ था। कुछ नहीं बदला है। हम अभी भी OPCW की रिपोर्ट का इंतजार कर रहे हैं। ब्रिटिश सरकार ने कहा है कि नोविचोक का इस्तेमाल हुआ है। हम पहले भी कई बार कह चुके हैं कि हमें भी वही लगता है जो ब्रिटेन मानता है। इस बात की संभावनाएं बहुत ज्यादा हैं कि इस घटना के पीछे रूस का हाथ है। ये थे जर्मन सरकार की प्रवक्ता के शब्द। आप सुन रहे हैं BBC समाचार। नाइजीरिया में गिरफ्तार एक शिया मुस्लिम नेता के समर्थकों ने राजधानी आबुजा में बड़ा प्रदर्शन किया। शिया नेता शेख इब्राहिम ज़कज़की को साल 2015 से बिना किसी आरोप के जेल में रखा गया है। ज़कज़की को उत्तरी शहर ज़ारिया में 3 साल पहले एक सैन्य अभियान के बाद गिरफ्तार किया गया था, जिसमें उनके 300 समर्थकों की मौत हो गई थी। बहरीन ने कहा है कि उसने तेल के नए भंडार का पता लगाया है, जिसमें तेल के 80 अरब बैरल हो सकते हैं। तेल का नया भंडार मिलने के समाचार की जानकारी रविवार को दी गई। इससे बहरीन तेल बाजार में एक बड़े खिलाड़ी के तौर पर उभर सकता है। 1932 के बाद ऐसा पहली बार हुआ है जब बहरीन में नए तेल भंडार का पता चला है। अमरीका ने आरोप लगाया है कि हूती विद्रोही व्यावसायिक जहाजों पर हमला करके यमन में संघर्ष को बढ़ावा दे रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने दावा किया था कि उन्होंने सऊदी अरब के नेतृत्व वाले गठबंधन के एक जंगी जहाज को निशाना बनाया है। BBC समाचार।
ये BBC हिंदी सेवा है और आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर। मैं हूं राजेश जोशी। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर के करारा स्टेडियम में 21वें राष्ट्रमंडल खेलों की अब से कुछ देर पहले आतिशबाजी और सांस्कृतिक झलकियों के बीच चकाचौंध भरी शुरुआत हो गई है। इस रंगारंग कार्यक्रम में भारतीय खिलाड़ियों के दल का नेतृत्व किया पीवी सिंधु ने। कुछ ही देर में चलेंगे सीधे गोल्ड कोस्ट, जहां बीबीसी हिंदी के रेहान फजल आपसे बात करने को तैयार हैं, लेकिन पहले बात अमरीका और चीन के बीच लगातार बढ़ती जा रही कड़वाहट की। अमरीका और चीन के बीच व्यापार युद्ध एक नए मोड़ पर पहुंच चुका है। अभी ये कहना मुश्किल है कि ये मोड़ निर्णायक साबित होगा या नहीं, लेकिन ये तय है कि दोनों ताकतवर देशों के बीच चल रही इस रस्साकशी का असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। अमेरिका ने चीन से आयात की जाने वाली 1300 वस्तुओं की लिस्ट जारी करके कहा है कि इन पर 25% आयात शुल्क लगेगा। चीन ने बिना समय गंवाए अमरीका से आयात की जाने वाली 100 से ज्यादा चीजों पर 25% आयात शुल्क लगाने का ऐलान कर दिया है। इनमें कार हैं, हवाई जहाज हैं और सोयाबीन जैसी चीजें भी शामिल हैं। चीन और अमेरिका के इस व्यापार युद्ध पर ही आज सुनेंगे साप्ताहिक कार्यक्रम दुनिया जहान, पर पहले सुनिए बीबीसी संवाददाताओं की रिपोर्टों का सार कमलेश मटेनी से।
चीन ने अमेरिका की जवाबी कार्रवाई में जो आयात शुल्क लगाया है उससे 50 अरब डॉलर के उत्पादों पर असर पड़ेगा। चीन की राजधानी बीजिंग में चीन के उप वित्त मंत्री जियु ग्यांगयो ने कहा कि चीन किसी भी कीमत पर विदेशी दबाव के आगे नहीं झुकेगा।
अगर आप आधुनिक चीन की स्थापना के इतिहास पर नजर डालेंगे तो आपको पता चलेगा कि चीन बाहरी दबाव के सामने कभी नहीं झुका है। बाहरी दबाव से चीन के लोग और ज्यादा मेहनत करने को प्रेरित होंगे। बाहरी दबाव से चीन की जनता विदेशों में हमारे विकास पर और ज्यादा ध्यान केंद्रित करेगी।
चीन के उप वित्त मंत्री जियु ग्यांगयो के शब्द। चीन के उप वाणिज्य मंत्री वांग शोन ने भी कहा कि चीन ने अब अपनी भीतरी ताकत दिखाना शुरू किया है।
चीन व्यापार युद्ध नहीं चाहता क्योंकि इस युद्ध में कोई नहीं जीतने वाला, लेकिन हम व्यापार युद्ध से घबराने वाले भी नहीं हैं। अगर कोई व्यापार युद्ध करने की जिद पकड़ता है तो हम उसे जवाब देंगे।
ये थे चीन के उप वाणिज्य मंत्री वांग शून के शब्द। चीनी कार्रवाई से पहले अमेरिका ने चीनी उत्पादों के आयात पर 25% शुल्क लगाने का ऐलान किया और कहा कि चीन अमेरिकी बौद्धिक संपदा की चोरी करता है, जिसकी वजह से शुल्क बढ़ाने का फैसला किया गया है। इनमें मेडिकल उत्पादों से लेकर टेलीविजन और मोटरसाइकिल तक शामिल हैं। चीन ने अमेरिकी सोयाबीन, बीफ, तंबाकू के साथ साथ अमेरिकी कार और हवाई जहाजों पर भी आयात शुल्क बढ़ा दिया है। अर्थशास्त्रियों ने अंदाजा लगाया ही था कि अमेरिका का ये कदम चीन को जवाबी कार्रवाई के लिए उकसाएगा और अमेरिकी उपभोक्ताओं को भी बढ़े हुए दामों को झेलना होगा। पिछले साल अमेरिका ने चीन से 506 अरब डॉलर का सामान आयात किया था। शुल्क लगाने का फैसला उस जांच के बाद किया गया जिसे राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पिछले साल बौद्धिक संपदा की चोरी के आरोपों के बाद शुरू किया था। पिछले महीने ही ट्रंप ने बताया था कि जांच के बाद सबूत मिले हैं कि चीन ऐसी कार्य पद्धति इस्तेमाल कर रहा है जिससे अमरीकी कंपनियां चीनी कंपनियों के साथ तकनीक साझा करने को मजबूर हो जाती हैं।
ये रिपोर्ट सुना रही थी कमलेश। कुछ ही देर पहले मैंने चीन की राजधानी बीजिंग में वरिष्ठ पत्रकार साइबल दास गुप्ता से बात की और पूछा कि इस होड़ का असर क्या होगा।
पहले तो चीन की थोड़ी सी उम्मीद थी कि ट्रेड वॉर को अवॉइड किया जा सकता है, उसे अवॉइड किया जा सकता है क्योंकि चीन को नुकसान बहुत होगा, लेकिन अब चीन को लग रहा है कि वो तो होना ही है और अब लड़ाई में जुट जाओ एक। और दूसरा, राजनीतिक तौर से पूरे यूरोप में एक हवा है कि चीन ट्रेड में गलत काम करती है, अनफेयर प्रैक्टिस करती है और पूरे यूरोप में इस पर चुनाव भी लड़े गए हैं। जर्मनी में चुनाव के दरमियान इसका बड़ा असर था। तो चीन को अगर टिट फॉर टैट नहीं करती है तो चीन अपनी कमजोरी अगर दिखाती है तो कल को यूरोप ये करेगा, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, सब लोग ये करेंगे, तो चीन को तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा। इसलिए उसे तो अब अपनी हिम्मत और शक्ति दिखानी है पॉलिटिकली, अपने देश में, अपने घर में और दुनिया के आगे।
अब सवाल यहाँ पर यह होता है कि चीन और अमेरिका के संबंध वैसे भी माशाल्लाह बहुत ही अच्छे तो नहीं थे, चाहे साउथ चाइना सी के मामले में देख लीजिए या दूसरे मामले में। अब ये जो ट्रेड वॉर हो रहा है, दुनिया को कितना घबराना चाहिए इससे?
दुनिया को थोड़ा सा तो काफी घबराना चाहिए, खास करके स्टॉक मार्केट के खिलाड़ियों को। इसका कारण यह है कि देखिए, कितना भी घमासान विरोध हो एक दूसरे के प्रति, लेकिन एक दूसरे के प्रति ट्रेड में बहुत बुरी तरह से निर्भर है। सिर्फ यूएस का चीन के पर 500 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट चलता है। कुल मिला के दोनों के टोटल ट्रेड अगर आप देखे तो 1500 बिलियन डॉलर का ट्रेड है दोनों देशों के बीच में, पूरे दुनिया के ट्रेड का एक बहुत बड़ा हिस्सा है, तो सारे का सारे ट्रेड वॉर में लोग मारे जाएंगे और छोटे छोटे देश यहाँ तक के भारत को भी बहुत बड़ा नुकसान होगा। क्योंकि अगर ट्रेड वॉर होता है, एक तरफ से देखिए हमारी आईटी कंपनी वहाँ काम कर रही है, सारी जो अमेरिकन कंपनी है जो चीन पर निर्भर है, 30-40% चीन से प्रॉफिट ले रहे हैं, उनको तो फिर आईटी सर्विस की कम जरूरत पड़ेगी ना, और कम जरूरत पड़ेगी तो हमारी आईटी कंपनी की इस्तेमाल कम होगा। इस तरह से हर एक कंपनी हर एक देश में नुकसान भोगेगी और बुरी तरह से।
ये थे चीन से, चीन की राजधानी बीजिंग से साइबल दास गुप्ता। चीन और अमेरिका ने एक दूसरे के माल पर तगड़ा आयात शुल्क लगाया, इस व्यापार युद्ध को समझने के लिए अब से कुछ देर में सुनेंगे कार्यक्रम दुनिया जहान पर पहले राष्ट्रमंडल खेल। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट शहर में राष्ट्रमंडल खेलों का उद्घाटन हो चुका है, कल से ये प्रतियोगिताएं शुरू हो जाएंगी। जो रेहान फजल हर शुक्रवार को विवेचना लेकर आते हैं वो इस समय गोल्ड कोस्ट पहुंचे हुए हैं और वहां से सीधे फोन के जरिए हमारे संपर्क में हैं। मुझे उम्मीद है कि रेहान साहब आप हमारे संपर्क में अभी होंगे। विवेचना का तो इस हफ्ते जो कुछ होगा शुक्रवार को वो हमें हमारे श्रोताओं को पता चलेगा ही, लेकिन फिलहाल आप वहाँ क्या देख रहे हैं, रात का अंधेरा गहरा चुका है।
जी हाँ राजेश, अगर हम कहें कि इतिहास, संस्कृति और संगीत का जबरदस्त समन्वय था आज का उद्घाटन समारोह, तो बिल्कुल गलत नहीं होगा। आप यहाँ होते तो अश अश कर जाते पूरे दृश्य को देखकर। गोल्ड कोस्ट का करारा स्टेडियम 34,000 दर्शकों से खचाखच भरा हुआ था। शुरू में अच्छी खासी बूंदाबांदी भी हो रही थी, लेकिन आप जानते हैं कि गोल्ड कोस्ट को पूरी दुनिया में उसके बीचेस के लिए जाना जाता है। उद्घाटन समारोह में इन बीचेस को हूबहू स्टेडियम में उतार दिया गया था लाइट एंड साउंड के जरिए, यहां तक कि लोग न सिर्फ बीचेस पर लेटे हुए थे बल्कि सर्फिंग भी कर रहे थे और समुद्र की लहरें भी उनके ऊपर आ रही थी और ये सब स्टेडियम के अंदर हो रहा था।
क्या बात है, इस तो यकीन नहीं हो रहा जो आप बता रहे हैं रेहान साहब।
जी हाँ, और इसके बाद डिडगेडू ऑर्केस्ट्रा की एक जबरदस्त प्रस्तुति थी और बंगारा ओरिजिनीज ने बेली डांस किया और एक बहुत दिलचस्प प्रस्तुति थी मेगालू वेल की छवि को दिखाना। ये मछली, ये जो वेल है मेगालू, ये साल में एक बार सर्दी में गोल्ड कोस्ट के बिल्कुल बगल से होकर निकलती है, साल में सिर्फ एक बार इसको दिखाया गया। राजेश,
भारतीय दल की बात करते हैं अब रेहान साहब, कौन कौन हैं? और जाहिर सी बात है पीवी सिंधु ने नेतृत्व संभाला, साड़ी पहने हुए थी?
नहीं, साड़ी नहीं पहने हुई थी पीवी सिंधु। पीवी सिंधु बाकायदा ब्लेजर में थी, नीले रंग के ब्लेजर में थी। 227 सदस्यों का दल था भारत का, और लेकिन सब लोग नहीं थे उसमें क्योंकि कल मुकाबले होने हैं वेटलिफ्टर्स के और जिम्नास्टिक्स के, वो लोग वहां पर नहीं आए। हॉकी के खिलाड़ी जरूर मौजूद थे, विक्रम सिसोदिया जो शेफ द मिशन थे भारत के, वो थे आगे आगे, और भी खिलाड़ी, एथलेटिक्स की पूरी टीम चल रही थी। लेकिन जिन लोगों को कल मुकाबला होना है सुबह सुबह, वो लोग प्रैक्टिस कर रहे थे, अपने आप को तैयार कर रहे थे कल सुबह के मुकाबले के लिए, लेकिन बहुत इनफॉर्मल थे। सब लोग हंसी मजाक कर रहे थे, सेल्फीज ले रहे थे, दर्शकों की तस्वीरें खींच रहे थे, बहुत ही अनौपचारिक माहौल था भारतीय दल में।
रेहान साहब, इससे पहले कि आप फोन रखें, हमारे श्रोताओं से वादा कीजिए, प्रॉमिस कीजिए कि सुबह शाम आप गोल्ड कोस्ट से ताजा तरीन खबरें उन तक पहुंचाएंगे।
बिल्कुल राजेश, सुबह भी लाइव आएंगे आपके पास और अगले 15 अप्रैल तक रोज सुबह और शाम जो भी यहां पर घटित होगा आपके सामने लेकर आएंगे।
और आपके साथ देवाशीष कुमार भी हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद। ये थे गोल्ड कोस्ट से रेहान फजल। लौटते हैं हिंदुस्तान की ओर। अप्रैल की तपती दोपहरी में बुर्का पहने, हाथ में तख्ती लिए हजारों मुसलमान महिलाओं ने आज दिल्ली के रामलीला मैदान में इकट्ठा होकर तीन तलाक बिल के खिलाफ खामोश प्रदर्शन किया। इस विरोध प्रदर्शन का आयोजन ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड ने किया था। पिछले दो महीने से देश के अलग अलग शहरों में सड़क पर उतरकर मुस्लिम महिलाओं ने इस तरह अपनी आवाज बुलंद की। क्या है इनकी मांगे और क्यों है ये तीन तलाक बिल के खिलाफ, इस पर प्रदर्शनकारी महिलाओं से बात की बीबीसी संवाददाता सरोज सिंह ने।
मेरा नाम रजिया है, मैं ये कहती हूँ कि ये तीन तलाक का मसला उठा रहे हैं। तीन तलाक हो गई और उसके बाद में उसका शौहर जेल में डाल दिया। जब शौहर जेल में डाल दिया तो वो औरत किराए के घर में रहती है अपने बच्चों को लेकर के,
तो वो बच्चों का खर्चा कहाँ से उठाएगी, किराया कहाँ से देगी? अगर शौहर जेल में चला गया, वो तो सड़क पर आ गई। सरकार उलझा रही है, ये बर्बाद कर रही है। आदमी तो अंदर चला गया, ना बच्चों को बाह मिल सका।
जनाब, हमें इस बिल में ये दिक्कत है, ये हमारा धार्मिक मामला है और हम नहीं चाहते जो हमारे अल्लाह के नबी, अल्लाह के महबूब जो हमारे लिए कानून बना गए वो हमें लागू हो गया और हम उसको कबूल करते, इसलिए हम किसी का इंटरफेयर नहीं चाहते अपने धार्मिक मामले में।
जी, ये मोदी सरकार जो है ना, हमारे लिए जो तलाक बिल लाई है वो हमारे लिए नुकसानदेह है और ये हम नहीं चाहते कि हमारी शरीयत में मुदाखलत करें। ये औरतों के लिए सही नहीं है। ये बीवी को तलाक दे देगा, उसके लिए 3 साल की जेल हो जाएगी, उसके बाद औरत को वो फिर खर्चा देगा, क्या वो उसके साथ फिर जिंदगी करेगा? ये अल्लाह का कानून है, हमारे लिए बनाया गया है।
इस रैली को हम सब महिलाओं ने ही कॉल किया है, हमारी प्रेसिडेंट हैं, ख्वातीन की विंग है, मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड की एक ख्वातीन की विंग है जो अपने आप फैसले करती है और उसके बाद उन फैसलों पे हमारे मौलानाओं ने फैसला किया है और हम खुद भी जागरूक हैं, इस देश के जागरूक महिलाएं हैं, तो क्या हमें नहीं पता हमारे साथ ज्यादती हो रही है, हमारे साथ गलत कानून बन रहा है? हर जगह मुखालिफत होती है, ये जनतंत्र राज है। 15 को 50 हज़ार को बराबर समझेंगी क्या आप? देखिए, हर मजहब में एथिस्ट भी होते हैं, उनके अपने ख्यालात अलग होते हैं, वो अपने ख्याल के साथ जी लें, पर हमारा एक मजहबी तासुर है, उसमें वो मदाखलत ना करें।
उज़्मा पारेख जी, हम लोग ये चाहते हैं, यहाँ पर हम इसलिए जमा हुए हैं कि हम गवर्नमेंट से ये अपील करना चाहते हैं, बीइंग अ सिटीजन ऑफ डेमोक्रेटिक कंट्री एंड अ सेक्युलर कंट्री, हमको ये राइट्स है कि हम अपने पर्सनल लॉज पर इंडिपेंडेंटली और पीसफुली अमल कर सकें और इसमें कोई मुदाखलत ना हो, और गवर्नमेंट ने हमको ये हक दिया है, तो हम ये चाहते हैं, हम ये अपील करते हैं गवर्नमेंट से कि इस बिल को वो वापस ले और इसको सेलेक्ट कमेटी को भेज दे, और अगर वो रिफॉर्म्स करना ही चाहती है तो पूरी हिंदुस्तान की खवातीन के दीगर और भी मसाइल है, जैसे कि आप देखते हैं इलिटरेसी, पावर्टी, अनएजुकेशन और वुमेन की सेफ्टी, इस पर ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, और अगर गवर्नमेंट ऐसे कुछ लॉज लाती है तो हम तमाम धर्मों के साथ मिलकर उनको ज़रूर सपोर्ट करेंगे।
दिल्ली में प्रदर्शन कर रही कुछ मुस्लिम महिलाओं की आवाज़ें। ग्वालियर पुलिस ने उस युवक की शिनाख्त कर ली है जिसकी एक तस्वीर पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर देखी जा रही है। इस तस्वीर में ये नौजवान रिवॉल्वर से हवाई फायर करते हुए नजर आ रहा है। मीडिया के एक हिस्से में इस युवक को लगातार दलित प्रदर्शनकारी बताया जा रहा था। दलित संगठनों ने 2 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट के SC/ST उत्पीड़न कानून पर दिए गए निर्देशों के विरोध में देशव्यापी प्रदर्शन का आयोजन किया था। मध्य प्रदेश में इन प्रदर्शनों के दौरान कई लोगों की मौत हो गई थी। पड़ताल करने के लिए BBC संवाददाता फैसल मोहम्मद अली ग्वालियर पहुंचे और वहां से भेजी है उन्होंने ये रिपोर्ट।
2 अप्रैल को हुई हिंसा के मद्देनजर ग्वालियर में जो 40 FIR दर्ज हुए हैं और जिन 75 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, उनमें सबसे ज्यादा चर्चा में है 2 स्वर्ण युवकों का मामला। ग्वालियर पुलिस अधीक्षक डॉक्टर आशीष,
जांच की जा रही है, उन्हें चिन्हित करके मेरे द्वारा उन पे भी कार्रवाई करने का निर्देश दिया गया है। जो एक पिस्टल लेके फायर करने का आया था उस पे 308 का अपराध भी पंजीबद्ध किया गया है और उन्हें शीघ्र गिरफ्तारी करने का निर्देशित किया गया है। राजा चौहान पे 308 का, बॉबी तोमर हैं उन पे हत्या का मुकदमा।
बॉबी तोमर पर 22 साल के दलित युवक दीपक की हत्या का इल्जाम है, जबकि राजा चौहान की रिवाल्वर लिए हवा में फायर करती तस्वीर पिछले दिनों टीवी चैनलों और सोशल मीडिया पर यह कहकर वायरल होती रही कि वो दलित प्रदर्शनकारी हैं। लेकिन फिर एक दलित कार्यकर्ता ने इस बात को सामने लाया कि नहीं, ये तस्वीर किसी दलित की नहीं बल्कि एक स्वर्ण युवक की है।
बस उन्होंने हमला किया, उनके हाथ में रिवाल्वर कट्टे भी थे, पत्थर भी थे, डंडे भी थे, मुँह बांधे हुए थे, पहचान में कोई आ नहीं रहा था। नतीजे ये हुआ कि हमको आत्मरक्षा में अपने हथियार निकालना पड़ेगा, हमने भी हवा में गोलियां चलाई, तब ये भगदड़ मची।
हालांकि राजा चौहान के पिता सुरेंद्र सिंह चौहान दावा करते हैं कि उनका बेटा उस दिन यहाँ था ही नहीं। चाचा नरेंद्र सिंह चौहान हालांकि फायरिंग की बात स्वीकार करते हैं।
सर, एक तो हम लोग सवर्ण लोग हैं, ठाकुर हैं, तोमर हैं। दूसरा, इस साल हम लोगों ने यहाँ शिवराम जाटव जो BJP का पार्षद चुना है, हम लोगों ने पिछले बार वो BSP की रामअवतार की वाइफ थी रामरती, तो वो लोग इस तरह से रंजिश रखते थे।
जबकि बॉबी तोमर के चचेरे भाई राजेश सिंह तोमर उनके भाई के खिलाफ हुए FIR के पीछे राजनीति बताते हैं।
अनुसूचित जाति, जनजाति और बरचेस सामान्य कास्ट का जी विवाद पैदा कराया गया और इसकी जानकारी पहले से थी और पहले से प्लानिंग की गई थी कि सारी की अगर जो रोडों पर बंद कराएंगे तो हमें कहाँ कहाँ किसको कैसे हमें दबाना है, कैसे कैसे रोकना है।
ये आरोप है कि 2 अप्रैल को हुए प्रदर्शनों को कुछ लोगों ने जातीय हिंसा की शक्ल देने की कोशिश की। जीवाजी विश्वविद्यालय में राजनीतिक विभाग के प्रमुख एपी सिंह भी कहते हैं कि दलितों की तरफ से किसी तरह की हिंसा नहीं हुई।
इसमें प्रकट रूप से किसी के पास हथियार नहीं था। इसमें जानबूझ के कुछ लोगों ने उनको काउंटर करने की कोशिश की और उस काउंटर में फिर धक्का मुक्की भी हुई। फिर जैसे भीड़ करती है कि कोई भाग रहा है तो उसके पीछे भीड़ भाग रही है, वो घर में घुस गए तो भीड़ भी घुस गई, वगैरह वगैरह ही होता रहा। और उसके बाद फिर धीरे धीरे ये मूवमेंट पूरा हिंसक मूवमेंट हुआ।
कल पास के ज़िले भिंड में स्वर्ण समाज से जुड़े कुछ लोगों ने 2 अप्रैल को दलितों की रैली के विरोध में प्रदर्शन निकालने की कोशिश की और सूबे के मंत्री लाल सिंह आर्य के घर पर पथराव भी किए गए। लोग यहां जो हुआ उसे दलितों की तरफ से की गई हिंसा का नतीजा बताने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन अब तक प्रदेश में इससे जुड़ी हिंसा में मारे जाने वाले 7 लोगों में से 6 दलित थे। फैसल अहमद अली, BBC ग्वालियर।
BBC हिंदी सेवा शॉर्टवेव 41, 31 और 25 मीटर बैंड यानी 7,565, 9,460, 9,510 और 11,795 किलोहर्ट्ज़, साथ ही मीडियम वेव 1,413 किलोहर्ट्ज़ पर आप सुन रहे हैं कार्यक्रम दिन भर।
जी हाँ, दिन भर कार्यक्रम आप सुन रहे हैं BBC हिंदी सेवा से और मैं हूँ राजेश जोशी। आपने कार्यक्रम की शुरुआत में सुना कि किस तरह 2 विश्व शक्तियां यानी चीन और अमेरिका एक दूसरे के व्यापारिक हितों को चोट पहुंचाने की कोशिश कर रही हैं। आज से 20 या 25 साल पहले कहा जाता था कि ग्लोबलाइजेशन देशों की सीमाओं को गैर जरूरी बना देगा, पर अब अमेरिका और चीन फिर से व्यापारिक दीवारें ऊंची कर रहे हैं। इस बार संदीप सोनी इसी विषय पर रोशनी डाल रहे हैं, सुनिए दुनिया जहान।
दुनिया में शायद ही कोई ऐसा देश होगा जो पूरी तरह से आत्मनिर्भर हो, जो सिर्फ निर्यात करता हो, जिसे कुछ भी आयात करने की जरूरत ना हो। वस्तुओं और सेवाओं की शक्ल में आयात निर्यात की यही बाध्यता छोटे बड़े हर देश पर लागू होती है। इस मामले में अमेरिका का दर्द यह है कि वो चीन से बहुत अधिक सामान खरीदता है।
Fact is we weren't treated and we haven't been treated fairly by other countries, but I don't blame the other countries. When I was in China,
इससे चीन का विदेशी मुद्रा भंडार लबालब भर गया है, लेकिन चीन अमेरिका से उतना अधिक आयात नहीं करता। आयात निर्यात का यही असंतुलन अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर अरुण कुमार कहते हैं,
सबसे आसान तो ये है कि आप जो बाहर से माल आ रहा है उस पे एक टैरिफ लगा दीजिए, एक ड्यूटी लगा दीजिए, जो अभी ट्रंप साहब ने किया, जिससे कि जो बाहर से माल आ रहा है वो महंगा हो जाएगा। जब वो महंगा हो जाएगा तो फिर आपके देश में वो कम बिकेगा और इससे फिर जब बैलेंस जो है वो थोड़ा बराबर हो जाएगा। लेकिन जितना बड़ा डेफिसिट है उसके हिसाब से जो ट्रंप साहब ने $50 बिलियन के गुड्स पे लगाया है उससे तो कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। तो मुझे लगता है कि एक सिग्नल दिया है अमरीका ने कि अगर ये स्थिति बेहतर नहीं होती है तो हम इसको और आगे बढ़ाएंगे। और चीन ने भी सिग्नल दिया है कि उन्होंने $50 बिलियन पे ड्यूटी लगाई तो चीन ने $3 बिलियन के ऊपर ड्यूटी लगाई।
अमेरिका और चीन के बीच इस ट्रेड वॉर में एक शब्द दोबारा चर्चा में आ गया है, वो शब्द है प्रोटेक्शनिज्म यानी संरक्षणवाद। ट्रेड वॉर को समझने के लिए इसे भी समझना जरूरी है।
आप अपने को इसलिए प्रोटेक्ट कर रहे हैं जिससे कि आपका उत्पादन कम ना हो। होता क्या है कि जब बाहर से माल ज्यादा आएगा तो आपका उत्पादन कम हो जाएगा उतना। तो अगर आपको अपनी इकोनॉमी को बढ़ाना है, ग्रोथ बढ़ानी है, तो आप तो चाहेंगे कि उत्पादन बढ़े, और अगर बाहर से ही माल आता रहेगा तो आपका उत्पादन उतना नहीं बढ़ेगा। जहां से आपका माल आ रहा है उस अर्थव्यवस्था का उत्पादन बढ़ेगा तो वहां की ग्रोथ बढ़ेगी। तो ये जो प्रोटेक्शनिज्म है ये एक तरह से अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने का एक जरिया है। जैसे कि आजकल हम मेक इन इंडिया का कार्यक्रम में चलाना चाह रहे हैं, पर चीन भी चाहेगा नहीं कि ये ट्रेड वॉर ज्यादा चले, क्योंकि उसको पता है कि अगर वो सब जगह प्रोटेक्शनिज्म वगैरह आता रहा तो चीन को काफी नुकसान होगा उसका।
दूसरे विश्व युद्ध के बाद छोटे बड़े ऐसे कई मामले सामने आए जब कुछ देशों ने संरक्षणवाद को बढ़ावा देने के लिए अन्य देशों के उत्पादों पर प्रतिबंध लगाने की भरसक कोशिश की। जैसे यूरोप जाने वाले केले पर टैक्स बढ़ाया गया, जापान में बाहर से आने वाले चावल का विरोध किया गया। लेकिन अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर के सामने ये बहुत छोटे मामले थे। जानकार मानते हैं कि विश्व व्यापार संगठन के अस्तित्व में आने के बाद कारोबार की जमीन पर अमेरिका और चीन के बीच ऐसा झगड़ा इससे पहले कभी नहीं हुआ। ट्रेड वॉर और संरक्षणवाद का ये विवाद वैश्वीकरण की अवधारणा पर सवाल भी खड़े करता है। आर्थिक मामलों के जानकार प्रोफेसर डॉक्टर भरत झुनझुनवाला कहते हैं,
जिस समय WTO बना था 90 के दशक में, उस समय विचार ये था जो विकसित देश हैं उनमें नई टेक्नोलॉजीज का डेवलपमेंट होता रहेगा और वो विंडोज सॉफ्टवेयर और पर्सनल कंप्यूटर जैसे नए उत्पाद बेचते रहेंगे, उन पे रॉयल्टी कमाते रहेंगे और इससे ग्लोबलाइजेशन से उनको पूरे दुनिया में अपने हाईटेक माल बेचने का अवसर मिलेगा। और दूसरी तरफ चीन और भारत को कपड़े और फुटबॉल जैसे लेबर इंटेंसिव माल बनाकर अमेरिका को करने का मौका मिलेगा। इस प्रकार दोनों गुटों के लिए, विकसित और विकासशील दोनों के लिए, ये लाभ का सौदा है कि अगर हम ग्लोबलाइजेशन करें। अब इसमें परिस्थिति में परिवर्तन ये आया, बीते दशक में पश्चिमी देशों में कोई विशेष नई टेक्नोलॉजीज ऐसी डेवलप नहीं हुई जिनका एक्सपोर्ट करके वो विशेष प्रकार का लाभ कमा सके। परिणाम क्या हुआ कि जो वेस्टर्न कंपनीज थी, मल्टीनेशनल, उनको तो पूरे दुनिया में घूमने का मौका मिल गया, लेकिन उनके लाभ से जो अमेरिका के जनता को एक्सपेक्टेड ट्रिकल डाउन या बेनिफिट्स होने थे वो उनको नहीं मिले। इसलिए अमेरिका में जमीनी एक रिएक्शन हुआ कि यह ग्लोबलाइजेशन हमारे किस काम का, और इसलिए ये रिएक्शन हुआ है जो कि अमेरिका से शुरू हुआ है।
अमेरिका और चीन के बीच इस ट्रेड वॉर का असर बाकी दुनिया पर भी पड़ रहा है। जानकार मानते हैं कि बात बढ़ने पर विश्व व्यापार संगठन कमजोर पड़ सकता है। हालांकि अंदरूनी कारोबारी दबाव की वजह से हो ये भी सकता है कि ट्रेड वॉर खुद ही कमजोर पड़ जाए, लेकिन ये सारी संभावनाएं अमेरिका और चीन के रुख पर निर्भर करेंगी।
चाइना ये चाहता है कि अमेरिका के मार्केट उसके लिए खुले रहें। अब जैसे जो ये ट्रेड वॉर शुरू हुआ, ये वॉशिंग मशीन से शुरू हुआ। चाइना में बनी हुई वॉशिंग मशीन अमेरिका में भारी मात्रा में इंपोर्ट हो रही थी। ट्रंप ने सबसे पहले इनके ऊपर ड्यूटी बढ़ाई। चाइना ये चाहता है कि उसके यहाँ बनी हुई वॉशिंग मशीन को अमेरिका के मार्केट में खुला प्रवेश मिले, और अमेरिका ये चाहता है हमारी कंपनीज को चाइना में प्रवेश मिले। लेकिन चाइना की वॉशिंग मशीन अमेरिका में प्रवेश करने से अमेरिकन कर्मी को, अमेरिकन श्रमिक के रोजगार जो हनन हो गए, उसका अमेरिकन मल्टीनेशनल के पास हल नहीं था, इसलिए उन्होंने इससे विड्रॉ कर। मैं तो स्पष्ट मानता हूं कि ये बढ़ेगा।
इस पूरे घटनाक्रम के बीच जानकारों का ये भी मानना है कि अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप पर अपनी घरेलू राजनीति का भी दबाव है। वो दिखाना चाहते हैं कि उन्हें अमेरिकी कामगारों की चिंता है। दूसरी तरफ चीन का बाजार बहुत बड़ा है और वो हर चीज का उत्पादन बहुत बड़े पैमाने पर करता है। कामगारों को अपेक्षाकृत कम मेहनताना देने वाले चीन के पास उन्नत तकनीक की भी कमी नहीं है। इस हिसाब से मौजूदा ट्रेड वॉर में चीन अमेरिका पर भारी नजर आता है। चीन बाकी दुनिया से कम माल खरीदता है, बेचता बहुत अधिक है। इससे चीन का विदेशी मुद्रा भंडार काफी मजबूत स्थिति में आ गया है। अमेरिका को लगता है कि दुनिया में उसका दबदबा कम होता जा रहा है, लेकिन चीन ये बात भी जानता है कि संरक्षणवाद की हवा तेज हुई तो दिक्कत उसे भी हो सकती है।
दुनिया जहान के साथ ही आज की ये सभा अंतिम चरण तक पहुंच चुकी है। आइए चलते चलते सुनते हैं मुख्य समाचार।
BBC समाचार। अमेरिका और चीन के बीच ट्रेड वॉर और गहरा गया है। चीन ने पलटवार करते हुए 100 से ज्यादा अमरीकी वस्तुओं के आयात पर 25% शुल्क लगाया है। ऑस्ट्रेलिया के गोल्ड कोस्ट में 21वें कॉमनवेल्थ गेम्स का आगाज हो गया है। इन खेलों में इस बार 71 देश और प्रांत भाग ले रहे हैं। तुर्की, ईरान और रूस के राष्ट्रपति आज तुर्की की राजधानी अंकारा में मुलाकात कर रहे हैं। इनके बीच इस बात पर चर्चा होगी कि सीरिया में चल रहे गृहयुद्ध को कैसे खत्म किया जाए। ब्रिटेन ने कहा है कि वो पिछले महीने केमिकल नर्व एजेंट से हुए हमले की संयुक्त जांच के लिए रूस की तरफ से आए प्रस्ताव पर विचार कर रहा है। बहरीन ने कहा है कि उसने तेल के नए भंडार का पता चलाया है जिसमें तेल के 80 अरब बैरल हो सकते हैं। BBC समाचार।
ये थे अब तक के मुख्य समाचार, और मुख्य समाचारों के साथ ही हमारी आज की ये सभा यहीं संपन्न होती है। इसका तकनीकी पक्ष संभाला कपिल देव सिंह ने, फेसबुक के जरिए आप तक पहुंचाने में मदद की ब्रजेश मिश्र ने। अब सभी साथियों की ओर से मैं राजेश जोशी आपसे विदा लेता हूं। अगली मुलाकात होगी भारतीय समय के मुताबिक कल सुबह 6:30 बजे। तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार, शुभ रात्रि।